सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे मन की बात की 131वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के संबोधन पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
नमस्कार सोनू जी।
शेखर जी, मन की बात में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है और उन्होंने कई उपलब्धियों की बात करी, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने जो कल ही संपन्न हुआ है ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में, उसकी बात की और बताया हमें कि वहां पर किस किस तरह से भारत का जो ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में जो कद है वो कैसे उठा। एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। यह अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है।
शेखर जी, आप बताएं हमें कि ये जो एआई समिट हुई और इसके जो विभिन्न पहलू रहे, भारत का जिस तरह से यहाँ पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में एआई इकोसिस्टम में जो एक छवि उभर के आई है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगी आप बताएं हमें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है जो प्रधानमंत्री ने इतना इंक्लूसिव एटीट्यूड लिया है। उन्होंने युवाओं के जो जोश है, उत्साह है, उसको सराहा और उन्होंने सभी देश वासियों को मुबारकबाद दी कि ये एक सफल समिट रहा। कैसे देखते हैं आप इस उपलब्धि को?
तोरी जी, पहली बात, ये इतना बड़ा समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक नया फ्रंटियर एरिया है टेक्नोलॉजी में, वो भारत में और नई दिल्ली में का आयोजित किया गया और जिस समिट में कई लीडर्स के नेता आए, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति, कई लीडर्स आए थे। साथ ही साथ जितने वर्ल्ड में कंपनीज इस पर काम कर रहे हैं, गूगल से लेकर आपके ओपन चैट, इस तरह जितने कंपनीज अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, सब यहाँ आए थे। यहाँ पे एक जो कह सकते हैं एक मीटिंग ऑफ द माइंड्स, यानी कई लोगों की जो प्रोजेक्ट चल रहा है, नए नए क्या क्या कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, आगे एआई का कैसे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या नया एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है और भारत में क्या हो रहा है इसको लेकर। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसका यहाँ भारत आयोजित करना ही, कि मतलब है कि भारत में कई कंपनीज, कई लेबोरेटरीज, कई विश्वविद्यालय इसमें लगे हुए हैं और हमारी तरफ से जो सामने लाया गया यही है कि कैसे, जैसे प्रधानमंत्री जी आज मन की बात में कहा कि हमारी तरफ से 3-4 मॉडल्स जो हमारे लोगों के, किसानों के लिए, बाकी जो अन्य अन्य शिक्षा क्षेत्र में कैसे इसको इस्तेमाल किया जा रहा, तो अपने आप में एक तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि भारत पे हुआ है। और ये जो हम सोच रहे थे कि भारत पे क्या हो रहा है, हम कैसे कोप अप कर रहे हैं इसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए आगे क्या क्या करना है, इस पे कितने निवेश होनी चाहिए, और हमने देखा सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है उनसे लेकर कई जो बड़े बड़े सीईओज है वो अपने बात रखी और साथ में उनके प्लान्स पे और आगे वाले होने वाले कार्यक्रम में, प्रोग्राम्स पे भारत का कहां भूमिका है। जैसे सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ, मतलब करोड़ों की बात की कैसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विशाखापट्टनम में गूगल की एक बड़ी सेंटर बन रही है जहां पे एआई के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं एआई का ऑलरेडी हमारे लाइफ पे बहुत असर पड़ रहा है, मेडिकल फील्ड में हो रहा है। आप मोबाइल खोल लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको जेमिनी या जो भी मोबाइल सिस्टम है आप में, ऑटोमेटिकली एक आर्टिफिशियल ये आ जाता है जो आपके लिए मदद करता है।
बिल्कुल, और आपने सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करी तो उसके बारे में उन्होंने सराहा हमारे जो किसान हैं। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जिस तरह से पारंपरिक जो हमारी नॉलेज है, विजडम है, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसका संगम किया है ताकि कृषि क्षेत्र और आगे बढ़े। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसके बारे में क्या कहा।
हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वे धरती के सच्चे साधक है। हमारा आज का किसान तो परंपरा और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर चल रहा है और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि हमारे किसान अब सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि गुणवत्ता, वैल्यू एडिशन और नए बाजारों पर भी ध्यान दे रहे हैं।
शेखर जी, उन्होंने कुछ बहुत ही प्रेरणात्मक हमें उदाहरण भी दिए जो इनोवेटिव फार्मिंग हो रही है। आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में भी, जो टेक्नोलॉजी है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रही है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही लाभदायक कहें कि दृष्टिकोण है?
देखिए, जो उदाहरण प्रधानमंत्री जी किस तरह हमारे भारतीय किसान कैसे इनोवेट कर रहे हैं अपने काम को अपने लेवल पे, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया हिरोड पटेल का जो उड़ीसा के बिलोंग करते हैं, कि किस तरह उन्होंने, पैडी कल्टीवेशन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनकी जो पॉन्ड है उस पर एक मेश डाल के, यानी एक नेट डाल के, उस पर उन्होंने जो क्रीपर सब्जियां हैं वो सब्जियां ग्रो करने लगे वो, और उसके बाद साथ में उसी पॉन्ड में मछली भी डाल दी ताकि मछली का भी फार्मिंग हो जाए। यानी लैंड यूज को और पानी बचाते हुए अपने आप के लिए एक एडिशनल इनकम की व्यवस्था कर ली। तो इस तरह बहुत लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने केरल का भी जिक्र किया, त्रिशूर जिले में ऐसे एक गांव है जहां 570 तरह की चावल वहां पे ग्रो हो रहा है और उसमें कई हर्बल वैरायटीज भी हो रहा है। तो किसान बहुत कुछ कर रहे हैं, इसी के कारण आज भारत मतलब सबसे ज्यादा चावल उत्पत्ति करने वाला देश भारत है।
आउट ऑफ द बॉक्स जो एक थिंकिंग है उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, जैसा उन्होंने कहा वैल्यू एडिशन, क्वालिटी, हर चीज पर ध्यान दिया जा रहा है और नए नए बाजार भी तलाशे जा रहे हैं। एक और उन्होंने संवेदनशील बात कही और जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, डिजिटल अरेस्ट और फ्रॉड की जो समस्या है उसको उन्होंने एक गंभीर समस्या बताते हुए जागरूक किया मासूम सीनियर सिटीजन जो आमतौर पर इसके शिकार होते हैं कि क्या क्या वो तरीके अपना सकते हैं ताकि वो इससे बचे रहे। ये कितना इम्पोर्टेंट लगा आपको?
देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। हर दिन कहीं ना कहीं कोई शिकार हो रहा है इस तरह की, जो डिजिटल अरेस्ट कहिए या फ्रॉड कहिए, और करोड़ों रुपये जा रहा है इसमें, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, मैंने देखा है कि कई यंग लोग भी इसमें फंस जाते हैं। कभी आता है कि भाई आपका गैस का बिल भरना है या आपकी KYC चाहिए, और लगातार सरकार की तरफ से, RBI की तरफ से जागरूक की कैंपेन भी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप क्या देख रहे हैं, कोई ना कोई कारण दिखा के किसी तरह इनको ट्रैप करके अपने OTP दे देते हैं, कभी बैंक का पासकोड दे देते हैं, उसके बाद पूरा अकाउंट से पैसा साफ हो जाता है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने मन की बात सुना, ये लोगों को सतर्क करने के लिए जागृति की आवश्यकता है। और ये डिजिटल अरेस्ट भी आप जानते हैं किस तरह, कोई अपने आप को पुलिस ऑफिसर कहता है, CB ऑफिसर कहता है, ED ऑफिसर कहता है, फिर कहता है आप घर में ही रहना है, आपके हाउस अरेस्ट है। और मुझे भी समझ कभी कभी लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग कैसे फंस जाते हैं, कि इस तरह कोई डिजिटल अरेस्ट ही नहीं है। भारतीय सरकार ने बहुत विज्ञापन निकाला है जागृत करने के लिए, तो हमेशा हमें जागृत रहना पड़ेगा इस मामले, क्योंकि आपकी सेविंग चला जाता है अगर आप जागृत नहीं रहेंगे।
और उन्होंने ये भी कहा जैसे कि मौसम बदलते हैं तो हम अपने कपड़े बदलते हैं, हम अपने खान पान बदलते हैं, वैसे ही अपना पासवर्ड भी बदलते रहिए। एक और उन्होंने बहुत ही संवेदनशील बात करी वो अंग दान के बारे में, और एक एग्जाम्पल दिया एक 10 महीने की बच्ची का जिसके माता पिता ने अंग दान किया उसकी मृत्यु के बाद और इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। ये आपको लगता है कि बहुत प्रेरणात्मक एक उन्होंने बात छेड़ी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ेगी?
बिल्कुल सोनू जी, आपने उस 10 महीने की बच्ची की जिक्र किया है, अलीन शरीर इब्राहिम करके केरल के एक मासूम बच्ची जिसका मौत एक्सीडेंट में हुआ था, लेकिन तुरंत व्यवस्था की गई थी, उनकी ऑर्गन्स है तिरुवनंतपुरम में, इनकी डेथ शायद कहीं कोच्चि के पास हुआ था और तिरुवनंतपुरम काफी दूर है, कम से कम 3-3.5 घंटे का रास्ता है। किस तरह एक ग्रीन कॉरिडोर बना के उनकी ऑर्गन्स को दूसरे एक जो व्यक्ति जिनकी बहुत जरूरत है उनको देकर उनकी पूरी रियल लाइफ दे गई है। ये इसको डोनेट करने का जो फैसला लिया इस बच्ची की पेरेंट्स ने, खास करके अरुण इब्राहिम और शरीन इब्राहिम जो फादर मदर है इस बच्ची के, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि एक दूसरे कोई किसी को अगर जीवन दे सकते हैं तो वो बड़ी बात है, एक प्रकार से सैक्रिफाइस है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने कई एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे गौरंग बैनर्जी की जिक्र किए बंगाल के, जो नाथुला पास तक जा चुके हैं, उनका भी इस तरह की एक लंग ट्रांसप्लांट हुआ था। एक रामदेव सिंह है सिकर राजस्थान के, उनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो इस तरह कई एग्जाम्पल्स है जो हमें बहुत प्रेरणा देती है। ऑर्गन डोनेशन को लेकर जो एक मुहिम चल रहा है देश भर में, तो सब लोगों को शामिल होनी चाहिए।
एक और उन्होंने जो बात कही कि अभी जो T20 हो रहा है उसमें बहुत सारी जो टीम्स है उसमें भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, ये एक हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये लोग मातृभूमि से जुड़े हैं लेकिन कर्म भूमि के विकास में सहयोग दे रहे हैं, ये भी बहुत ही एक दिल को खुश करने वाली बात उन्होंने हाईलाइट की।
अभी जो कैनेडियन टीम आए थे उनमें टीम कैप्टन दिलप्रीत बाजवा थे, वो कैनेडियन टीम के कैप्टन है लेकिन वो बिलोंग करते हैं गुरदासपुर पंजाब। और वैसे एक श्रेयस मोवा, वो भी कनाडा के टीम में लेकिन वो भी भारतीय मूल के हैं। और ऐसी बाकी कंट्रीज में भी, इस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि पहली बार हमने देखा यूएस की क्रिकेट टीम भी आई थी, उसमें कैप्टन जो अमेरिकन टीम के कैप्टन थे मोनांक पटेल, वो भी गुजरात के हैं, वो अंडर 16 अंडर 18 टीम में खेले। वैसे सौरभ मुंबई से, हरदीप सिंह, मिलिंद कुमार दिल्ली, ये सारे नाम जो हम बता रहे हैं ये सारे अमेरिका की टीम में, इंडिया के हैं लेकिन अमेरिका के टीम में अमेरिका के लिए खेल रहे हैं। जैसे ओमान का टीम में भी कई थे, और वैसे ओमान की टीम में जतिंदर सिंह, विनय शुक्ला, करण जय, ये सारे नाम देखे सब भारतीय मूल के हैं, वहां के सिटीजन है। वैसे भारत मूल के लोग अभी आजकल न्यूजीलैंड टीम में भी है, यूएई टीम में है, इटली टीम में है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो भारत मूल के हैं, जहां पे वो रेजिडेंट है, जहां के सिटीजन है, उनके लिए केम कर रहे। मतलब ये कहना है प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि भारतीय मूल के हो या भारतीय हो, जहां भी जाते हैं वो अपने मदरलैंड से कनेक्टेड रहते हैं, मातृभूमि से, और अपने कर्मभूमि के लिए भी काम करते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए भी लगे रहते।
और उन्होंने जो धरोहर को बचाने की, हमारी जो इतनी रिच हेरिटेज है उसको बचाने के जो भी हमारे प्रयास है उनका भी जिक्र किया। केरला में उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में केरला कुंभ हुआ जो बहुत सालों के बाद हुआ और एक बहुत ही पुरानी प्रथा है। और उन्होंने राजा जी उत्सव की बात करी जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, सी राजा गोपालाचारी, उनका सम्मान में कल उनके जो मूर्ति है उसका निवारण होने वाला है राष्ट्रपति भवन में और फिर एग्जीबिशन होगी। उन्होंने सबसे आह्वान किया कि आप आइए और उसे देखिए। सो ये जो कल्चरल हेरिटेज हमारे जो धरोहर है उसमें जो सम्मान, उसमें एक गर्व इन सब अनाउंसमेंट से पैदा होता है।
बिल्कुल, आपने दक्षिण भारत में केरला में खास करके 250 साल के बाद महाकुंभ हुआ भारतपुरा नदी में। मतलब पहले होता था लेकिन टिप्पू सुल्तान के काल में बंद हो गया था, उसके बाद भी वो कभी रिवाइव कर दी, लेकिन अभी फिर रिवाइव हुआ है। सैकड़ों लोग गए थे उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, सब लोग वहां जाके स्नान किए। ये अपने आप में जो पुराने परंपरा की रिवाइवल है। दूसरी बात जो मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए लगातार मोदी सरकार लगी हुई है जो कॉलोनियल है, जो ब्रिटिश राज की जो हमारी मानसिकता है उसको कैसे हम तोड़े, उस हिसाब में आपने देखा कई जगह के नाम बदली गई है। और सबसे बड़ी खास बात जो सीआर राजगोपालाचारी, जो हमारे भारत के पहली गवर्नर जनरल यानी राष्ट्रपति की पोस्ट आने से पहले, मतलब हम रिपब्लिक होने से पहले गवर्नर जनरल होते, जैसे हमारे स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र पाया तब लॉर्ड माउंटबेटन थे, उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सीआर राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी करके सब लोग पुकारते। अब तय हुआ है कि राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल कोर्टयार्ड में उनकी एक स्टैच्यू रखी जाएगी और ये 24 फरवरी से रखी जाएगी, क्योंकि वहां पे सारे ब्रिटिश समय के जो व्यक्ति है उनकी पर्सनैलिटी है, उनकी स्टैट्यूज वगैरह है, जैसे एडविन लुटेंस जो नई दिल्ली को जो डिजाइन किए थे, उनके जगह पर राजा जी को, क्योंकि राजा जी जैसा नेता, एक स्वाधीन संग्रामी थे, गांधी जी, नेहरू जी, उनके साथ भी वो काफी स्वाधीन संग्राम में बहुत भूमिका रचा है, तो उनका भी इस तरह ऑनर करके हम ब्रिटिश काल या ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का जो हमें जो विरासत है वो हमें चेंज करके जो हमारी असली फाउंडेशन है, असली भारतीय जो ट्रेडिशन है उसको हम कैसे रिस्पेक्ट करें, उसको सामने लाएं और आने वाले पीढ़ी को भी हम समझाएं भाई यही हमारी विरासत है, ये कोशिश करना चाहिए और सरकार इस दिशा में लगी हुई है।
जी बिल्कुल, जो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने छात्र जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के शब्द कहे, और उन्होंने सबको पूरे देश को रामदान और आने वाले होली पर्व के लिए भी शुभकामनाएं दी और सबसे कहा कि वे फिर एक बार स्वदेशी खरीदने की तरफ अपना ध्यान रखें। इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर जी, जो विभिन्न पहलू थे उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की मन की बात के कार्यक्रम के।
धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में